الحمد لله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ناظرین کرام، دوسرا عشرا مکمل ہونے والا ہے. یہ عشرا رحمتوں کا عشرا تھا، بالخصوص ان لوگوں کے لیے جنہوں نے خلوص نیت کے ساتھ روزے رکھے. ایسے لوگ پچھلے 10 دنوں میں خدا کی رحمتوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں ان پر نازل فرماتے رہے ہیں. یہ لوگ بہت خوش قسمت ہیں کہ انہوں نے 20 روزے مکمل کر لیے ہیں اور اب خدا کی رحمت ان کے اوپر سایہ فگن ہے. لیکن بہت سارے لوگ اپنے روزوں کو بعض ایسے گناہوں کی وجہ سے ضائع کر بیٹھتے ہیں جن کا انہیں شعور بھی نہیں ہوتا کہ وہ کوئی گناہ کر رہے ہیں. ایسے گناہوں میں سے ایک گناہ یہ ہے کہ ہم صرف اپنے وہم کی وجہ سے دوسرے بھائیوں کے ساتھ، عزیزوں کے ساتھ، محلے داروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ غلط رویہ اختیار کر لیتے. سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں بتایا ہے کہ لا تکفو ما لیس لک بہ علم، ان چیزوں کے پیچھے نہ پڑا کرو، ان چیزوں کے درپے نہ ہوا کرو جن کا تمہارے پاس کوئی ثبوت، کوئی ٹھوس علم نہ ہو. اس کے معنی یہ ہیں کہ ہم وہم پرستی نہیں کریں. اس کے معنی یہ ہیں کہ ہم کسی کے خلاف بلا سوچے سمجھے سنی سنائی بات پہ اقدام نہ کر دیں. اس کے معنی یہ ہیں کہ سنی سنائی بات پہ کو مان لینا، یہ جیسا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات پہ عمل کر لیتا ہو، اس کو مان لیتا ہو. یہ ساری باتیں اس آیت کے اندر فرمائی گئی ہیں کہ لا تکفو ما لیس لک بہ علم، اس چیز کے درپے نہ ہوا کرو جس کا تمہارے پاس ثبوت موجود نہ ہو، حقیقی علم اس کا تمہارے پاس موجود نہ ہو. سورہ حجرات میں اسی حکم کو اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ جب کوئی ایسا آدمی جس کے بارے میں جھوٹا ہونے کا امکان ہو تمہارے پاس خبر لے کر آئے تو اس کی ضرور تحقیق کر لیا کرو. ناظرین کرام، اسلام اصل میں یقینیات کا دین ہے. یہ یقین سے شروع ہوتا ہے اور یقین پر ہی ختم ہوتا ہے. اس کے ہاں وہم پرستی، اس کے ہاں تواہم پرستی، اس کے ہاں گمان، اس کے ہاں خیالات، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ میں نے یقین پر اس کی بنیاد رکھی ہے اور یقین پر بندہ مومن کو کھڑا کرتا ہے اور یقین کے ساتھ ہی اس دنیا سے لے جانا چاہتا ہے. یہ اسلام کا خاص امتیازی پہلو ہے. باقی تمام مذاہب جو اسلام کے علاوہ ہیں ان کی اگر حقیقت پر غور کریں تو کوئی فلسفیانہ رائے ہوگی، کسی کا خیال ہوگا، کسی کا خواب ہوگا، کسی نے کچھ ایسا اس کے ساتھ معاملہ ہوا کہ جس کی اس کو حقیقت پتہ نہیں، لیکن وہ کہتا ہے کہ مجھے نروان حاصل ہو گیا. اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ ساری وہم، گمان اور محض آراء ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. جبکہ اسلام چاہتا ہے کہ انسان حقیقت کے اوپر کھڑا ہو، اس لیے وہ اپنے آپ کو حق کہتا ہے. ذات باری تعالیٰ کو بھی حق کہا گیا ہے اور وہ حقوق جو ہم ادا کرتے ہیں ان کو بھی حق یا حقوق کہا گیا ہے، اس لیے کہ سارے کا سارا دین اسی حق پہ کھڑا ہے، اسی یقین پر کھڑا ہے. تو ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے، ہم مسلمانوں کے لیے بالخصوص جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے اس دین پر قائم ہیں، جو یقینیات کا دین ہے، کہ ہم لوگوں کے بارے میں بحث سنی سنائی بات پہ عمل کر لیں. تو یہ چیز اسلام کی روح کے خلاف ہے. اور روزہ اسی خدا کی طرف سے آیا ہے جس خدا نے یہ یقینی دین ہمارے اوپر نازل کیا ہے. تو جب یہ یقینی دین ہمارے اوپر نازل ہوا ہے اور اس مبارک مہینے میں نازل ہوا ہے تو ہم اس کو ضائع نہ کر بیٹھیں. آج بھی، رمضان کے دوران بھی، ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا ہے کہ ہم نے کون کون سی چیزوں میں ایسے بلا وجہ اقدام کر دیا ہے، دل میں خیال آیا کر دیا، کسی نے بات کہی اس کے اوپر اقدام کر دیا، دوستی چھوڑ دی، تعلق توڑ دیا محض چھوٹی سی بات پہ. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم بلا ثبوت اقدامات کرتے چلے جا رہے ہیں، بغیر یقین کیے، بغیر تحقیق کیے، ये चीज जायजा लेनी चाहिए, क्योंकि अगर हमने सुनी सुनाई बातों पे अमल किया तो जैसा कुरान मजीद कहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें खबर पहुंचे, खबर झूठी हो, तुम तहकीक किए बगैर उनके खिलाफ इकदाम कर दो और बाद में नदामत उठानी पड़े। और बात चीजें ऐसी हैं कि दुनिया में तो हो सकता है हमें नदामत का सामना ना हो, लेकिन कल क्यामत वाले दिन मारे जाएंगे, क्योंकि हमने बहुत सारी दोस्तियां, बहुत सारे हकूक सिर्फ इस वजह से अदा नहीं किए होंगे कि जो उसने ये कहा था हालांकि उसने ना कहा हो। जी मेरा ख्याल है कि उसने ये बात इस वजह से की थी तो आप, मैं इसलिए उसका हक अदा नहीं कर सकता, मैं उसको मिलना भी नहीं चाहता। तो ये सारे कुरान मजीद के नजदीक वहम परस्ती है, हकीकत परस्ती नहीं है, जबकि इस्लाम हकीकत परस्ती का दीन है, हकीकत पे खड़ा करता है। उसके यहां कोई चीज ऐसी नहीं है कि जो वहम हो, गुमान हो, ख्याल हो, वो ठोस ही हकायक का दीन है। तो इसलिए अपने जिंदगी के अंदर हमें ये असूल अपना लेना चाहिए कि जब भी कोई खबर हमें पहुंचे, जब भी कोई ख्याल हमारे दिल में पैदा हो, तो उस वक्त तक उसके ऊपर अमल ना करें जब तक कि उसको तहकीक करके साबित ना कर लें। जिसके बारे में आपको बताया गया है कि उसने ये बात कही है, तो उस आदमी से मिलकर पूछ लें कि भाई तुमने ये बात कही है, अगर उसने नहीं कही तो शुक्र करें, अगर कही है तो उसे पूछ लें कि भाई क्यों कही है, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, मैंने आपके साथ क्या किया है, वजाहत हो जाएगी और आपका सारा झगड़ा खत्म हो जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं कि हमारा भाई दूसरे भाई के बारे में आके बताता है कि उसने ये कहा, और हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, और मानने के बाद रिश्ता तोड़ देते हैं, दोस्ती छोड़ देते हैं। हद यह है कि वो हकूक अदा करने छोड़ देते हैं जो अल्लाह ने लाजिम कर रखे। बेटा मां के खिलाफ हो जाता है, जिसका हम जान चुके हैं कि अल्लाह ताला ने कितनी सख्ती से हुक्म दिया है कि नागवारी का भी इजहार नहीं कर सकते हो, और दिल के अंदर अगर मैल है तो अल्लाह ताला अगर तुम अमल में सही रहे तो माफ कर देगा। यानी दिल के अंदर मां बाप के बारे में मैल आना भी खुदा के नजदीक अच्छा अमल नहीं है। लेकिन हम महज अपने ख्यालात, महज दूसरों की बताई हुई बात की वजह से मां बाप से रिश्ता तोड़ देते, घर से निकाल देते, धक्के देते हैं। और हद ये है कि खुदा की कायम की हुई मीजान बिल्कुल तोड़ फोड़ कर रख देते हैं और हमें ख्याल भी नहीं होता कि हम कितना बड़ा गुनाह कर गए। इसी रमजान के दिनों में ऐसा हो रहा होता है, रोजे रखे होते हैं लेकिन हम ख्यालों पर और गुमानों पर बहुत कुछ कर गए होते हैं। तो पहली चीज जो मैं अर्ज करना चाहता हूं इस हुक्म के मुताबिक, वो ये है कि जब भी कोई खबर आए किसी की तरफ से आए, सियाना आदमी हो, समझदार आदमी हो, दयानतदार आदमी हो, झूठा हो, लपाटिया हो, किसी से भी कोई बात आए, तो उसको पहला आपका मेरा फर्ज है कि उसकी तहकीक करें कि ये बात दुरुस्त है, और अगर आप तहकीक नहीं कर सकते तो फिर अमल भी ना कीजिए, उसके मुताबिक राय भी ना बनाइए। तो पहला काम तहकीक करना है, आप जांचें परखें कि क्या वाकई ये बात हुई है, अगर नहीं हुई तो आप मुतमिन रहिए, अगर हुई है तो फिर जाके वजाहत जाइए। ये तहकीक इसलिए जरूरी है कि जैसा मैंने अर्ज किया, एक ये बात कि हमारा दीन यकीनियात पे खड़ा है तो हमारे सारे इकदाम यकीनियात पे खड़े होने चाहिए। दूसरी वजह भी कुरान ने बयान कर दी कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें बाद में पछताना पड़े कि ओहो मैंने क्या कर लिया। और ये पछताना दो मौके पर हो सकता है, जैसे मैंने अर्ज किया, दुनिया में भी कि जब आप पता चला कि ये बात हुई है, आप उनके खिलाफ चढ़ दौड़े, पता चला वहां तो वो बात ही नहीं थी, आप नदामत से शर्मिंदा होकर वापस आ जाए। दूसरी नदामत कल क्यामत वाले दिन होनी है, एक भाई खड़ा हो जाएगा, जनाब मैंने तो कुछ नहीं कहा था, ये नाराज हो गए, इन्होंने मुझे गालियां दे दी, मुझे इल्जाम लगा दिया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया था। तो ये चीजें जान लेनी चाहिए। इसी तरह ये बात भी, एक तो यह ना कि आदमी के झूठा होने का इम्कान है, एक बात ये होती है कि आदमी के झूठा होने का इम्कान नहीं होता लेकिन उसने बात जब सुनी तो गलती कर गया। ये बड़े से बड़े हकीम आदमी और बड़े शानदार आदमी, जैसे सैयदना उमर के साथ हुआ कि सैयदना उमर ने कोई नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह तबसरा सुना कि एक मैयत पे लोग रो रहे थे, तो आपने फरमाया कि देखो ये मैयत को अजाब हो रहा है और ये रो रहे हैं। सैयदना उमर ने इसको यूं समझा कि रोने वालों के रोने से मैयत को अजाब हो रहा है। चुनांचे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद उन्होंने ऐसे ही लोग मैयत पे, तो उन्होंने कहा कि देखो इनको पता नहीं है, इनके रोने से मैयत को अजाब हो रहा है। जब ये इतला हजरत आयशा को पहुंची रजी अल्लाह अन्हा, तो उन्होंने कहा कि उमर को गलती लगी है रजी अल्लाह अन्हो, आपने ये नहीं फरमाया था कि रोने से मैयत को अजाब हो रहा है, आपने ये फरमाया था कि देखो ये कितने बेपरवाह हैं कि मैयत को अजाब हो रहा है और ये अपने रोने में लगे हुए हैं, उसके लिए तौबा इस्तगफार करें, उसके लिए मगफरत की दुआ करें, शायद उसका अजाब टल जाए, तो ये इस बेपरवाही को आपने बयान किया था। तो इससे मालूम हुआ कि हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु जैसा आदमी एक बात को सुनने में इस तरह कर सकता है, तो क्या हम आप नहीं कर सकते? तो इसलिए दोनों पहलुओं से तहकीक होनी चाहिए, एक ये कि बात कहने वाला झूठ तो नहीं बोल रहा, दूसरा इस पहलू से कि बात सुनने में गलती तो नहीं लग गई। तो जो भी बात आप तक पहुंचे, अगर दयानतदार सिका आदमी है, झूठ बोलने वाला नहीं है, तो फिर इस पहलू से तहकीक होनी चाहिए, कहीं बात तो गलत नहीं हो गई, कहीं उसने समझने में गलती तो नहीं की है। और अगर आदमी ही झूठा है तो फिर तो आपको ज्यादा जरूरी है कि आप तहकीक करें, और तहकीक करके फिर कोई इकदाम करें। तो पहली जो चीज ला तकफु मा लैसा लक बिही इल्म से मालूम हो रही है वो ये कि सुनी सुनाई बात पे ना यकीन करना चाहिए ना अमल करना चाहिए, हमारे ऊपर तहकीक लाजम है। दो चीजों की तहकीक, बात सही है, बात को सही समझा गया है, झूठ नहीं है, और बयान करने वाले ने जब बयान किया तो सुनने वाले ने समझने में गलती नहीं की, इन दो बातों की तहकीक होगी। उसके बाद आपको हक पहुंचता है कि आप कोई दोस्ती तोड़े, उसके बाद हक पहुंचता है कि आप वजाहत पूछे कि भाई क्यों कहा गया है। हमारे यहां ये एक बड़ा मसला है कि लोग जब नाराज हो जाते हैं तो बोलचाल बंद कर देते हैं, हालांकि नाराजी में ज्यादा बोलना चाहिए और ये तहकीक करनी चाहिए कि नाराजगी की वजह क्या है, मेरा भाई मुझसे क्यों दूर। हो गया है, मुझसे क्यों नाराज हो गया है, उसे वजाहत पूछे। अगर फर्ज कर लीजिए कि गलती आपकी तरफ हुई और आप घर में बैठे नाराज होकर बैठे हुए हैं, वो मनवाने आ रहा है, लोग आ रहे हैं कि भाई बात मान जाओ, तो ये ऐसा ना हो कि आप अपने ख्याल में समझ रहे हो कि गलती उसकी है, हालांकि गलती आपकी अपनी हो, और कल दोहरे अजाब में पकड़े जाए। तो इसलिए जब नाराजी हो जाए तो उस वक्त ज्यादा जरूरी है कि जाके अपने भाई से पूछे कि वाकया क्या हुआ था, तुमने क्या कहा था, मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं कही, तुम क्यों नाराज हो गए, तुमने ऐसी बात क्यों कह दी उसको। ये तहकीक होनी चाहिए। हमारे मुआशरे में जितनी चुगलियां जितनी गीबतें होती हैं उनके बुरे असरात इसीलिए जाहिर होते हैं कि हम तहकीक नहीं करते। एक बहन आएगी दूसरी बहन के कान भर जाएगी, वो उसके खिलाफ जाके पता नहीं क्या क्या ताने और बातें कराएगी, उसके नतीजे में एक अजीब तरह की नाराजी, अजीब तरह की खलफशार और घर के अंदर फसाद किसी फसाद पैदा हो जाती है। ना किसी के दिल में सफाई रहती है, ना किसी के मिलने जुलने में सफाई रहती है, कोई आ जाए तो तब मुसीबत, कोई चला जाए तो तब मुसीबत, ये एक अजीब सी दुनिया वजूद में आ जाती है। लेकिन अगर हम तहकीक करने की अपनी आदत बना लें, जब भी हमारा कोई भाई हमारे से बात करे दूसरे के बारे में, तो उसको कहें मैं पूछे बगैर तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, तुम्हें सुनने में गलती भी लग सकती है, तुम झूठे भी हो सकते हो। और जाहिर है कि हम ये दूसरे को नहीं कह सकते कि तुम झूठे हो सकते हो, तो इस बात को दिल में मान लेना चाहिए कि ये दोनों इम्कानात मौजूद हैं कि हमारे भाई को सुनने में गलती लग गई या ये गलत बयानी कर रहा है। जब गलत बयानी कर रहा है तब भी, जब सुनने में गलती हो गई तब भी, हमारा अव्वलीन फर्ज ये है कि हम जाके अपने भाई से पूछें कि ये बात क्यों हुई, कैसे हुई, क्या मानी थे, क्या मतलब था तुम्हारा, तुम क्यों मुझे क्या कहना चाहते हो। ये जब पूछेंगे तो उम्मीद यही है कि 99% इम्कान इसी बात के हैं कि खैर की बात बरामद होगी। अगर उसका कोई शिकवा भी था तो वो भी दूर हो जाएगा, और आपको ही पता चल जाएगा कि आपके किसी इकदाम से उसको रंज हुआ था जिस वजह से उसने ये बात कही, और दोनों मिलकर सुलह सफाई कर लें, इसी से खैर बरामद होगा। तो पहली बात हमने ये जानी है ला तकफू मा लैसा लक बिही इल्म में, कि हम दूसरों की सुनाई हुई बात, दूसरों की कही हुई बात पर उस वक्त तक अमल नहीं करेंगे, यकीन नहीं करेंगे जब तक हम उसकी तहकीक ना कर लें। ये खुदा का हुक्म है, इसकी खिलाफ वर्जी बहुत से कबीरा गुनाहों को वजूद में लाती है, और ये खुद भी एक बड़ा गुनाह है, इससे बचने की कोशिश कीजिए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।